एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम जापान के एक ऐसे लेखक के संसार में उतर रहे हैं जिनके नाम के साथ ही प्रतिभा, जुनून और हाँ विवाद भी जुड़ जाते हैं। युकियो मिशिमा,
एक ऐसा नाम जो साहित्य जगत में आप कह सकती हैं एक चमकता सितारा भी है और एक गहरा रहस्य भी।
बिल्कुल।
युकियो मिशिमा, जिनका असली नाम किमिताके हिरोका था, 1925 में जन्म हुआ और 1970 में महज 45 साल की उम्र में जिस तरह उन्होंने अपनी जान दी, उसने सच में दुनिया को सन्न कर दिया था। उनका यह चुनावा नाम मिशिमा हालांकि माउंट फूजी के पास एक शहर से आया था, पर यह नाम जापानी संस्कृति के शायद सबसे जटिल और उत्तेजक अध्यायों में से एक बन गया है।
हाँ, उनकी शख्सियत में तजब के विरोधाभास थे, है ना? एक तरफ तो वो बेमिसाल साहित्यिक हुनर जिसे दुनिया मानती है, दूसरी तरफ उनका पूरा जीवन जैसे जैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच खिंचा हुआ था।
हाँ, कला और कर्म, या जैसा आपने कहा गुलदाउदी और तलवार, मतलब सौंदर्य और हिंसा, ये द्वंद्व उनके जीवन में साफ दिखता है।
और उनका वो नाटकीय अंत, वो सेपुकू, वो तो जैसे सिर्फ एक मौत नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जैसे उनके जीवन भर के दर्शन का एक चरम बिंदु था, एक परफॉर्मेंस, और इसने उन्हें लेखक से कहीं ज्यादा एक मिथक बना दिया। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पहेली जैसे इंसान के विचारों की तह तक जाएं, उनके काम को समझें और ये देखें कि उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है ना?
बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं उस दौर और माहौल से जिसने मिशिमा को गढ़ा, क्योंकि किसी भी विचारक को उसके समय से अलग करके देखना वो थोड़ा मुश्किल होता है।
सही कहा। हाँ, मिशिमा का जन्म और जवानी, वो जापान के इतिहास के शायद सबसे तूफानी दौर में गुजरे। वो ताइशो लोकतंत्र का अंत हो रहा था, सैन्यवाद बढ़ रहा था, फिर दूसरा विश्व युद्ध आया जिसने जापान को एकदम तोड़ कर रख दिया, और उसके बाद अमेरिकी कब्जा, उसने तो देश की पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए।
और युद्ध के बाद जापान ने तेजी से तरक्की तो की पर शायद कुछ खो भी दिया। मुझे याद है वो आर्थिक चमत्कार का दौर था।
हाँ बिल्कुल, आर्थिक चमत्कार तो हुआ लेकिन साथ ही पश्चिमी असर और भौतिकवाद भी बहुत हावी हो रहा था, और शायद उसी की प्रतिक्रिया में वो 1960 के दशक के छात्र आंदोलन हुए, वो बेचैनी दिख रही थी समाज में।
हाँ, और ये उथल पुथल साहित्य में भी दिख रही होगी।
बिल्कुल, साहित्य में भी एक तरफ तो यासुनारी कावाबाता जैसे लेखक थे जो पारंपरिक जापानी सौंदर्य बोध को पश्चिम के मॉडर्निज्म से मिला रहे थे, दूसरी तरफ युद्ध के बाद के ग्रुप्स थे जैसे सिंगोहा जो नैतिक पतन पर लिख रहे थे, या फिर बुराईहा स्कूल के लोग जैसे ओसामू दाजाई जो गहरी निराशा में डूबे हुए लगते थे।
लेकिन मिशिमा, उन्होंने इन सबसे एक अलग राह चुनी है ना, खासकर उस समय के जो वामपंथी बुद्धिजीवी थे उनसे उनका कुछ 36 का आंकड़ा सा लगता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, उनका रास्ता एकदम जुदा था। उन्होंने एक खास किस्म का सौंदर्यवाद चुना जिसमें समुराय नैतिकता, मतलब बुशिदो का एक बहुत ही रोमानी ख्याल था, और साथ ही नीत्शे और ऑस्कर वाइल्ड जैसे यूरोपीय विचारकों का भी गहरा असर था। उनके गुरु तो नोबेल विजेता कावाबाता थे पर वैचारिक रूप से वो बिल्कुल अलग थे। जैसे केन्ज़ाबुरो ओए हैं जो वामपंथी मानवतावादी लेखक थे, उनके एकदम विपरीत। ओए जहां आम इंसान की कमजोरियों पर लिखते थे, वहीं मिशिमा का जोर राष्ट्रवाद और एक तरह के एलीट सौंदर्य बोध पर था।
तो मिशिमा को लगता था कि युद्ध के बाद जापान अपनी आत्मा खो रहा है भौतिकवाद के लिए।
उन्हें ऐसा ही महसूस होता था, और ये सिर्फ उनके लेखन का विषय नहीं था, ये उनके दिल की टीस थी एक तरह से। उन्हें लगता था कि जापान ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपना गौरव, वो सब भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बेच दिया है, और ये जो बोध था, ये क्षरण का एहसास, यही उनके विचारों, उनके लेखन और आखिरकार उनके जीवन के अंतिम फैसले की जड़ में था, ऐसा लगता है।
इसी कड़ी में उनके बचपन और शुरुआती जीवन को देखना भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं उनकी दादी का उन पर बहुत गहरा असर था।
हाँ, ये बात सही है। जन्म तो टोक्यो के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था, पिता ऊंचे सरकारी अफसर थे, लेकिन बचपन का एक बड़ा हिस्सा उनकी दादी नात्सुको की देखरेख में गुजरा। वो एक पुराने समुराई खानदान से थी और वो उन्हें घर में ही रखती थी, काफी अलग थलग। उन्होंने ही मिशिमा को शास्त्रीय जापानी साहित्य और नो थिएटर की दुनिया दिखाई। लेकिन ये भी सच है कि वो कभी कभी उन्हें लड़कियों के कपड़ों में भी रखती थी।
अच्छा, ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। एक तरफ कला और परंपरा से परिचय, दूसरी तरफ एक तरह का अलगाव और शायद लैंगिक पहचान को लेकर भी एक उलझन।
बिल्कुल, शायद यहीं से उनके मन में पहचान, परफॉर्मेंस और वो जो बाहरी मुखौटा होता है उसके पीछे छिपे असली स्व को लेकर सवाल उठे होंगे। और बाद में उनका जो वो अति पुरुषत्व वाला रूप सामने आया वो शायद इसी बचपन की एक प्रतिक्रिया थी। शारीरिक रूप से वो बचपन में थोड़े कमजोर थे, लेकिन दिमागी तौर पर असाधारण रूप से तेज थे।
क्या कोई ऐसा खास पल था, कोई घटना जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी हो?
एक घटना का जिक्र जरूर आता है, किशोरावस्था में जब उन्होंने इतालवी चित्रकार गुइडो रेनी की बनाई सेंट सेबेस्टियन की पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में वो शहीद संत हैं जिन्हें तीरों से बीधा गया है, दर्द और सौंदर्य एक साथ। कहा जाता है कि इस छवि ने मिशिमा में कामुकता की एक ऐसी लहर जगाई जो दर्द, सुंदरता और मौत के एहसास से जुड़ी हुई थी। और ये थीम, सुंदरता, दर्द और मृत्यु का संगम, ये उनके लेखन में बार बार लौट कर आता है।
और उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही?
उन्होंने प्रतिष्ठित पियर्स स्कूल गाकुश्वियन से पढ़ाई की। वहाँ उनकी प्रतिभा जल्दी ही नजर आने लगी थी। कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। बाद में टोक्यो इम्पीरियल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली, वो भी विश्व युद्ध के दौरान। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ स्वास्थ्य कारणों और परिस्थितियों की वजह से वो सीधी सैन्य लड़ाई से बच गए, जिसका शायद उन्हें बाद में मलाल भी रहा हो।
तो इस उथल पुथल भरे माहौल और निजी अनुभवों ने जाहिर है उनके विचारों को एक खास शक्ल दी होगी। उनके मुख्य दार्शनिक सूत्र क्या थे, मतलब क्या खास बातें थी उनके विचारों में?
देखिए, मिशिमा का सबसे अनूठा काम शायद पारंपरिक जापानी सौंदर्य बोध और पश्चिमी विचारों का संगम करना था। जैसे मोनोनो आवारे का सिद्धांत है, मतलब हर चीज के नश्वर होने का वो मीठा सा दर्द, इसे उन्होंने नीच से जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिकों के विचारों से जोड़ा। वो मानते थे कि जीवन क्षण भंगुर है और इसीलिए उसे पूरी शिद्दत और सुंदरता से जीना चाहिए, भले ही उसका अंत त्रासद हो।
और ये विचार कि कला और जीवन अलग नहीं है, वो कलम और तलवार वाली बात जो आपने कही।
हाँ, ये उनके दर्शन का केंद्र है। उनके लिए लिखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, वो एक कर्म था, एक एक्शन, और वैसे ही जैसे शरीर साधना। इसीलिए तो उन्होंने 30 की उम्र के बाद वो बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी। ये महज वर्जिश नहीं थी, ये शरीर को इच्छा शक्ति से गढ़ने की कोशिश थी, उसे कला का एक जीता जागता नमूना बनाने की, जो उनके हिसाब से आधुनिक समाज की जो कथित कमजोरी थी उसका जवाब दे सके। उनके लिए सौंदर्य और हिंसा, कला और कर्म, ये अविभाज्य थे।
और ये सुंदर मृत्यु की अवधारणा जिसका जिक्र अक्सर उनके साथ होता है, ये सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है।
विरोधाभासी तो है, लेकिन मिशिमा के लिए ये बहुत अहम था। उनका मानना था कि जीवन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति एक ऐसी मृत्यु में है जो स्वेच्छा से किसी ऊंचे आदर्श के लिए चुनी गई हो और जिसमें एक तरह का सौंदर्य हो। हिंसा और आत्मविनाश को वो कला के जरिए एक उदात्त रूप देना चाहते थे। ये विचार हमें असहज कर सकता है, पर उनके अंतिम कृत्य को समझने के लिए इसे जानना जरूरी है।
उन्होंने आधुनिक समाज की जो आलोचना की वो तो समझ आती है, भौतिकवाद पर हमला, परंपरा का आह्वान।
हाँ, वो मानते थे कि आधुनिक समाज ने इंसान को उसकी आध्यात्मिक जड़ों से काट दिया है, इसीलिए वो बुशिदो यानी सैमुराई आदर्शों के एक बहुत ही रोमानी संस्करण को फिर से जिंदा करना चाहते थे। हालांकि आलोचक कहते हैं कि ये बुशिदो का एक काल्पनिक संस्करण था जो असल समुराई इतिहास से ज्यादा मिशिमा की अपनी जरूरतों को पूरा करता था। उनके लिए पहचान भी एक तरह का नाटक थी, एक मुखौटा जिसे हम सब पहने रहते हैं।
तो उनके लेखन के मुख्य विषय भी इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमते होंगे, जैसे समलैंगिकता, मृत्यु का आकर्षण।
बिल्कुल, समलैंगिकता, मौत का आकर्षण, पहचान का संकट, आधुनिकता की खोखली आलोचना, परंपरा की तलाश, ये सब उनके उपन्यासों और कहानियों में बार बार आते हैं। और हाँ, वो शब्दों की ताकत में गहरा यकीन रखते थे। उनका मानना था कि साहित्य बदलाव ला सकता है, वो महज मनोरंजन नहीं बल्कि दुनिया पर असर डालने का एक जरिया है।
चलिए अब उनकी कुछ खास रचनाओं पर बात करते हैं। उन्हें शोहरत तो काफी जल्दी मिल गई थी, है ना, कन्फेशंस ऑफ ए मास्क से।
हाँ, 1949 में आई थी वो किताब और एक सनसनी थी उस समय। ये एक अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है, एक ऐसे नौजवान की कहानी जो समाज से अपनी समलैंगिक इच्छाओं और मौत के प्रति आकर्षण को छिपाने के लिए जद्दोजहद करता है। ये पहचान, दिखावा और अंदरूनी सच्चाई के बीच के तनाव का बहुत शक्तिशाली चित्रण है और इसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था।
लेकिन शायद उनकी सबसे ज्यादा चर्चित कृति द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पवेलियन है, स्वर्ण मंदिर का दीवाल है।
बिल्कुल, 1956 में प्रकाशित हुई ये उपन्यास क्योटो के मशहूर स्वर्ण मंदिर को जलाने की सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन ये सिर्फ उस घटना का ब्यौरा नहीं है। मिशिमा इसके जरिए सौंदर्य की विनाशकारी शक्ति, ईर्ष्या और कला के सामने जीवन की तुच्छता जैसे गहरे सवालों से जूझते हैं। नायक एक हकलाने वाला भिक्षु है जो मंदिर की सुंदरता से अभिभूत भी है और उसे मिटा देना चाहता है। ये वही सवाल थे जो मिशिमा के जहन में हमेशा घूमते रहते थे।
और उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक महत्वाकांक्षा वो चार उपन्यासों की श्रृंखला में दिखती है, द सी ऑफ फर्टिलिटी।
बिल्कुल, वो उनका मैग्नम ओपस है। 1965 से 1971 के बीच लिखे गए ये चार उपन्यास, स्प्रिंग स्नो, रनवे हॉर्सेस, द टेम्पल ऑफ डॉन और द डिके ऑफ द एंजल, पुनर्जन्म के सिद्धांत के सहारे 20वीं सदी के जापान में आए आध्यात्मिक पतन की कहानी कहते हैं। हर उपन्यास में एक ही आत्मा अलग अलग शरीरों में जन्म लेती है और नायक का दोस्त होंडा इस चक्र को देखता है। बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है।
और सबसे सौगान वाली बात यह है कि इसका आखिरी हिस्सा उन्होंने अपनी मौत वाले दिन ही पूरा किया था। ये तो अविश्वसनीय लगता है।
हाँ, ये उनके जीवन और कला के विलय का शायद सबसे नाटकीय उदाहरण है।
जैसे वो कह रहे हो कि मेरी कहानी पूरी हुई, अब मेरा काम भी पूरा हुआ।
और श्रृंखला का अंत भी एक गहरी शून्यता के एहसास के साथ होता है जो शायद उनके अपने मन की स्थिति को दर्शाता हो।
उनकी एक और रचना पैट्रियोटिज्म नाम की कहानी और उस पर बनी फिल्म, वो भी बहुत कुछ कहती है ना?
बिल्कुल, देशभक्ति। ये एक युवा सैन्य अधिकारी और उसकी पत्नी के सेपुकू का बेहद ग्राफिक और विचलित करने वाला चित्रण है। और सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि उस पर फिल्म बनाकर खुद उसमें अभिनय करना, ये तो कला और जीवन को मिलाने की हद है। ये जानना उनके जुनून की गहराई दिखाता है। कई लोग इसे उनके अपने अंत की तैयारी या कह लीजिए पूर्वाभ्यास मानते हैं।
उन्हें अपने जीवनकाल में पहचान और पुरस्कार तो खूब मिले, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिला जिसके वो दावेदार माने जाते थे।
हाँ, शिंचोशा पुरस्कार, योमियूरी पुरस्कार जैसे कई जापानी सम्मान मिले। उनके गुरु कावाबाता ने उन्हें कई बार नोबेल के लिए नामांकित भी किया था, पर शायद उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, उनकी वो निजी सेना तातेनोकाई का गठन और उनके उग्र राष्ट्रवादी विचार इसके आड़े आए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब 1968 में कावाबाता को नोबेल मिला तो मिशिमा का मोह भंग हो गया और वो और ज्यादा कट्टर रास्ते पर चल पड़े।
उनकी मौत के बाद दुनिया ने उन्हें कैसे याद किया और आज उनकी विरासत क्या है?
मौत के फौरन बाद तो ज्यादातर सदमा और निंदा का माहौल था। कई लोगों ने उन्हें सिरफिरा और कट्टरपंथी कहकर खारिज कर दिया। दूसरी तरफ कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। लेकिन वक्त के साथ उनकी विरासत ज्यादा जटिल और स्थायी हुई है। अब लोग सिर्फ उनके विवादास्पद अंत को ही नहीं देखते बल्कि उनके लेखन की गहराई, उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ और भाषा पर उनके अधिकार को भी पहचानते हैं।
और उनका असर सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रहा जैसा आपने बताया।
बिल्कुल नहीं। मार्गरेट योसेनार, पॉल श्रेडर, ब्रेट ईस्टन एलिस जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और फिल्मकारों ने उनके काम से प्रेरणा ली है। क्वेर साहित्य और उत्तराधुनिक विचारों के विकास में भी उनका योगदान माना जाता है। आज भी वो एक ध्रुवीकरण करने वाले लेखक हैं। या तो आप उनसे खिंचे चले जाते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह नकार देते हैं, लेकिन उनकी अनदेखी करना मुश्किल है।
उनके कुछ कहे हुए वाक्य भी बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे वो कहते थे, परफेक्ट प्योरिटी इज पॉसिबल इफ यू टर्न योर लाइफ इनटू अ लाइन ऑफ पोएट्री रिटन विद अ स्प्लैश ऑफ ब्लड। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
हाँ, जिसका मोटा मोटा मतलब है, पूरी पवित्रता तभी मुमकिन है जब तुम अपनी जिंदगी को खून के छींटों से लिखी एक कविता की पंक्ति में बदल दो। ये सुनने में भयानक लग सकता है, लेकिन ये उनके जीवन दर्शन का सार है। कला, जीवन, बलिदान और मृत्यु का वो अविभाज्य रिश्ता। कर्म ही कविता है और सबसे बड़ी कविता शायद बलिदान है उनके नजरिए से।
एक और वाक्य जो उनके सौंदर्य बोध को दिखाता है, स्वर्ण मंदिर से, ब्यूटी इज समथिंग दैट बर्न्स द हैंड व्हेन यू टच इट।
हाँ, सुंदरता वो चीज है जिसे छूने पर हाथ जल जाता है। ये बताता है कि उनके लिए असली सुंदरता सुरक्षित या आरामदायक नहीं थी, वो खतरनाक थी, विनाशक थी और शायद इंसानी समझ से परे थी। वो ऐसी कला चाहते थे जो आपको झकझोड़ दे, आराम न दे।
मिशिमा के जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलू भी हैं, जैसे उनका वो बॉडी बिल्डिंग का जुनून और अपनी निजी सेना बनाना। ये सब क्या था?
हाँ, ये बातें उनके कलम और तलवार के सिद्धांत को जैसे अमली जामा पहनाने जैसी थीं। तातेनो काई यानी शील्ड सोसाइटी नाम की उनकी निजी सेना, जिसमें ज्यादातर युवा छात्र थे, वो सम्राट और पारंपरिक जापानी मूल्यों की रक्षा के लिए बनी थी, ऐसा उनका दावा था। ये उनके बढ़ते अतिवाद का प्रतीक थी। उनका मानना था कि जापान को अपनी सैन्य शक्ति और समुराई गौरव को फिर से हासिल करना चाहिए।
और ये तथ्य कि उन्होंने कुछ समय वित्त मंत्रालय में भी काम किया था, ये उनके जटिल व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखाता है।
हाँ, बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन हाँ। और जैसा हमने जिक्र किया, उनका शादी करना और पिता बनना भी कई लोगों के लिए एक सार्वजनिक मुखौटा था जो उनके अंदरूनी तूफानों और शायद समलैंगिक रुझानों को छिपाता था। उनकी जिंदगी सचमुच कई परतों वाली थी।
आज जब हम मिशिमा पर बात कर रहे हैं तो ये सोचना लाजमी है कि उनका जीवन और उनका काम हमें आज क्या सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। मिशिमा का जीवन हमें कला, राजनीति और नैतिकता के जो जटिल रिश्ते हैं उन पर सोचने को विवश करता है। क्या हम किसी कलाकार की कला को उसके जीवन, उसके विचारों और उसके कर्मों से पूरी तरह अलग करके देख सकते हैं, खासकर जब वो कर्म इतने चरम हो?
और सौंदर्य और विनाश के बीच क्या रिश्ता है? क्या सौंदर्य का जुनून अतिवाद की तरफ ले जा सकता है? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है ना?
बिल्कुल। हम युकियो मिशिमा जैसे प्रतिभाशाली लेकिन गहरे तौर पर विवादास्पद शख्सियतों की विरासत से कैसे निपटें? क्या हम उनके साहित्यिक योगदान की सराहना करते हुए उनके राजनीतिक विचारों और अंतिम कृत्य की आलोचना कर सकते हैं? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है शायद, लेकिन मिशिमा की कहानी हमें इन कठिन सवालों से जूझने के लिए मजबूर करती है। शायद यही उनकी स्थायी प्रासंगिकता है।
इसी विचार के साथ आज की ये ज्ञान गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। क्लोजिंग नरेशन प्रदत्त, क्लोजिंग नरेशन प्रदत्त। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्टिव फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।